Stress Management and Overview by Dr. Girish Patel.
किसी बात की जिंदगी में चिंता न कर, यह जिंदगी कोहिनूर के हीरे से कम नहीं। हर ठोकर तुझको बनाती जाती है, तेरी आंखों से पर्दे उठाती जाती। हर मौसम जाता है बदल, बदलने पर होती है हलचल। दिल छोटा न कर मेरे भाई, गम और दुखों से नहीं नाता तुम्हारा। हर वक्त जिंदगी को जा सकता है सवारा। विश्व स्वास्थ्य संस्थान का स्टेटिस्टिक बताता है कि 2020 तक डिप्रेशन वह सबसे मेजर बीमारी बन जाएगी, सबसे अधिक लोग डिप्रेशन के शिकार होंगे। तो इस बात की जानकारी प्राप्त करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, आपको एक दूसरा उदाहरण बताता हूं कि अगर आपके घर में कोई टेररिस्ट ने आकर के टाइम बॉम्ब रख दिया है, वो टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा है, आपको पता है कि आधे घंटे या एक घंटे के बाद वो फूटने वाला है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? पुलिस को बुलाएंगे। अच्छा, पुलिस आए तब तक फूट गया तो क्या करेंगे? पैसा लेके भाग जाएंगे। अच्छा, और बाहर निकल जाएंगे और क्या करेंगे? हाँ जी, अच्छा, बम को लेके भाग जाएंगे। अच्छा, और कुछ? और क्या करेंगे डॉक्टर साहब?
पड़ोसी के घर
पे। जो सबसे अच्छा तरीका है कि उसे डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि वह नाकामयाब हो जाए, या तो हम सेफ्टी की जगह पर चले जाएंगे, ये बात भी ठीक है। तो ऐसे ही अब जब हमें यह पता है कि डिप्रेशन इतना बढ़ने वाला है, टाइम बॉम्ब फूटने वाला है, तो या तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है या ऐसा कोई तरीका ढूंढना है ताकि यह एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, नर्वसनेस, इन सभी बातों से हम बचे रहे। स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड राइट थिंकिंग कोर्स की जिसका ही शॉर्ट फॉर्म है स्मार्ट, तो यह कोर्स इसीलिए डिजाइन किया गया है कि आने वाले 20 वर्षों में हर व्यक्ति को इसकी आवश्यकता होगी। और आज का जो विषय है वह इस सारे कोर्स का, स्मार्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम का ओवरव्यू है कि जिसमें हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इस सारे कोर्स में क्या क्या बातें होगी, इस सारे कोर्स को किस प्रकार से हमने डेवलप किया है, कि जिसके आधार से आप जान पाएंगे कि क्या सचमुच आपके इंस्टीट्यूट या आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या यह कोर्स उपयोगी है या नहीं। अगर आपको यह कोर्स उपयोगी लगे तो इसके टोटल 7 लेसन्स है, वह एक एक घंटे के 7 लेसन्स भी हम आपको आकर के करा सकते हैं कि जिसके द्वारा पूरा लाभ है वह सभी पार्टिसिपेंट्स को मिल सके। और इस कोर्स के द्वारा क्या होगा कि आपके संस्था के जो मेंबर्स है वह स्मार्ट बन जाएंगे। कौन सी बात में स्मार्ट? जो प्रेशर्स आने वाले हैं लाइफ में, प्रेशर्स आएंगे, ये जो लाइफ के प्रेशर्स है उसका सामना करने में, उसके साथ डील करने में आपके जो पार्टिसिपेंट्स है, मेंबर्स है, वह सभी स्मार्ट बन जाएंगे। कई अनुसंधान हुए हैं। एल यूनिवर्सिटी में एक अनुसंधान हुआ कि जिसमें यह पता चला कि वहां पर यूनिवर्सिटी में जो काम करने वाले लोग थे उनमें से करीब 40% को बहुत ज्यादा तनाव था। थोड़ा बहुत तनाव तो सभी को होता है, परंतु ऑलमोस्ट 40% को आवश्यकता से काफी अधिक तनाव था। और इन सब को कुछ समय के बाद साइकोसोमेटिक बीमारियां है वो हो सकती। इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है कि जिस जो बातें हम इस कोर्स में लेने जा रहे हैं इसी प्रकार की बातें कि जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने टेंशन से डील करने में कैपेबल बनता है। तो यह एक मल्टी सेंट्रिक स्टडी थी कि जो 22 अस्पतालों में की गई, यह सभी 22 अस्पतालों के जो इम्प्लॉयज थे उन सबको इस कोर्स में जो हम टेक्निक आपको बताने जा रहे हैं इस प्रकार की मेथड सिस्टमेटिकली बताई। और फिर देखा गया कि जब उन्होंने वह कदम उठाए तो करीब 70% उनका जो कॉम्पेंसेशन क्लेम्स होता था, इंश्योरेंस का जो क्लेम इन इंप्लॉयज के द्वारा होता था, वह इंश्योरेंस का क्लेम ऑलमोस्ट 70% कम हो गया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। शायद आप यह सोचेंगे कि अगर हमारे पास यह स्ट्रेस मैनेजमेंट और राइट थिंकिंग का कोर्स हम कराए तो टाइम वेस्ट होगा, जो हमारे मैनेजर्स है या तो दूसरे एम्प्लॉयज है वह सभी 7 घंटा काम कम करेंगे और यह कोर्स को अटेंड करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। परंतु यह आंकड़े बताते हैं कि जो इंश्योरेंस क्लेम होता है, आप जितना धन अपने इंप्लॉयज के पीछे लगाते हैं या तो वह बीमार हो जाने से जब वो छुट्टी पर चले जाते हैं और आपको जो लॉस होता है वह इससे अनेक गुना ज्यादा है। तो इसलिए सिस्टमैटिकली अगर यह बातें सभी को बताई जाए तो उससे हमें बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है। और तनाव, भल इस कोर्स में हम आपको ज्यादा मेडिकल बातें नहीं बताना चाहते कि इसमें ज्यादा हम टेक्निकल बातें इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो मेडिकल जो इंफॉर्मेशन है हो सकता है कि आप रिप्रोड्यूस ना कर सके। आप रट भी ले तो भी बोलने में कहीं दिक्कत हो जाएगी, कोई अगर आप गलती कर देंगे बोलने में तो ऑडियंस में अगर कोई डॉक्टर बैठे होंगे तो आपकी मजाक उड़ाएंगे, या तो जब वो आपको प्रश्न पूछेंगे कुछ तब भी यह प्रॉब्लम हो सकता है कि आप उसका सही उत्तर है वह न दे पाए। इसलिए सरल सी बातें आपके सामने रख रहे हैं कि वह सहज आप भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आज अधिकतर मेडिकल साइंटिस्ट इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कॉमन कोल्ड से कैंसर तक की बीमारियां और हेडेक से हार्ट अटैक तक की बीमारियां वह तनाव के कारण हो सकती है। एटलीस्ट 60-70% जो फिजिकल डिजीजेज है जैसे कि सर दर्द, कॉमन कोल्ड, अस्थमा, एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, हार्ट अटैक, ऐसी और भी ये लिस्ट डे बाय डे बढ़ता ही जाता है कि ऐसी अनेक बीमारियां तनाव जब लंबे असर तक चलता है तो यह हो सकता। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्यों हमें तनाव को कम करने के कदम उठाने चाहिए कि जो हमें मायो क्लिनिक में एक प्रयोग हुआ है उसके द्वारा पता चलती है। मायो क्लिनिक में पहली बार जब कई मरीज आए और उन मरीजों की जब जांच की गई तो तब यह पता चला कि इनमें मन से संबंधित कुछ तकलीफें हैं, जैसे कि उन्हें डिप्रेशन है या तो वह नर्वस हो जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा टेंशन है, इस प्रकार की मन की तकलीफें इन्हें हैं। परंतु उनकी जब अलग अलग टेस्ट ली गई तो पता चला कि इनका ब्रेन बिल्कुल ठीक है, इनके ब्रेन में अभी तक कोई भी खराबी निर्माण नहीं हुई है। और फिर ये जो मरीज थे बहुत बड़ी संख्या में कि जो कुछ समय के बाद, कुछ मरीज 6 मास के बाद वापस मायो क्लिनिक में आए, कुछ 2 साल के बाद या 5 साल के बाद वापस आए, और जब दोबारा यह पेशेंट इस हॉस्पिटल में आए और उनकी जांच की गई तो पता चला कि अब उन्हें वह जो पहले तकलीफ थी कि तनाव से संबंधित जो चिन्ह थे, जो तकलीफें थी वह तो है ही, परंतु इस बार जब फिर से उनके ब्रेन की जांच की गई तब पता चला कि अब उनके ब्रेन में भी डैमेज हुआ है। और यह एक पब्लिश्ड स्टडी है जिसमें रिसर्चर्स ने यह बताया कि ऐसा क्यों हुआ। पहले तो जब वो दो साल पहले आए थे तब उनका ब्रेन बिल्कुल ठीक था, तो अब ये दो साल में क्या तकलीफ हुई। उन्होंने कई थियरीज सामने रखी है कि इस समय में, हो सकता है वह एक साल का समय हो या पांच साल का समय हो, कि जिस समय में तनाव के कारण उनके ब्रेन पर भी धीरे धीरे असर होता गया। और आखिरी जब हमने उनकी जांच की तो भी पाया कि इनका ब्रेन भी डैमेज हुआ है। तो क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं? उन्होंने जो थियरीज रखी है बड़ी सरल है, आप भी याद रख के बता सकते हैं कि चिंता, निराशा, भय, क्रोध आदि जो बातें उनके जीवन में थी, उससे एक तो मस्तिष्क को खून पहुंचाने वाली जो बहुत ही सूक्ष्म नलिकाएं हैं जिसे कैपिलरीज कहते हैं, कि सर के बाल से भी वह सूक्ष्म नलिकाएं हैं, तो वह नलिकाएं और सुकड़ गई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो जो उसमें खून पहुंच रहा था वो ठीक से नहीं पहुंचा, तो इसके कारण ब्रेन को ठीक प्रकार से ब्लड सप्लाई नहीं मिली। दूसरा, कुछ ऐसे भी इमोशंस थे कि जिनके कारण उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और जब ये प्रेशर है इन सूक्ष्म नलिकाओं में बढ़ा तो कुछ नलिकाएं फूट भी गई, तो इसके कारण भी डैमेज हुआ। भले वो डैमेज बहुत कम है क्योंकि ब्रेन की एडप्ट करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और एक साथ में ब्रेन के एक हिस्से को ऐसी बहुत सारी कैपिलरीज ब्लड सप्लाई देती है, इसलिए अगर एक डैमेज हुई तो भी दूसरी नलिकाओं से ब्लड सप्लाई मिलती रहेगी, परंतु जब बार बार होता रहा तो भी फिर ब्रेन डैमेज हुआ। और तीसरी थियरी जो उन्होंने रखी है कि जो ब्रेन के नर्व्स है या तो ब्रेन की कोशिकाएं हैं जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं, जिसके निर्माण में चर्बी या तो फैट वह एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, भल अधिक फैट खराब भी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, परंतु अगर वो बहुत कम हो जाए तो भी बुरा है, उसका मेटाबॉलिज्म अगर बिगड़ जाए तो भी जो ब्रेन के सेल्स है वह ठीक से नहीं बन सकते हैं, तो यह फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुई स्ट्रेस से, और वह डिस्टर्ब होने के कारण भी धीरे धीरे न्यूरोनल डैमेज होता गया, और अल्टीमेटली सिर्फ आप स्मार्ट कहेंगे तो लोग समझेंगे नहीं कि क्या बोल रहे हैं, यह सिर्फ पॉपुलराइज करने के लिए उसका एब्रीवेशन है, अदरवाइज हम जो पूरा नाम है वो जब भी बताना है तब पूरा नाम बताएं। यह कोर्स शायद एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों सभी को यह कोर्स करना चाहिए। और जब भी जीवन में तनाव होता है और उसके कारण जैसे बताया कि बीमारियां हो सकती है, शायद आपको यह भी प्रश्न होगा कि भी मेरा पड़ोसी तो बहुत टेंशन में रहता है, कई सालों से उसे टेंशन है परंतु उसे कोई बीमारी नहीं हुई, और मैं जो इतना टेंशन में नहीं रहता, मुझे तो थोड़ा थोड़ा ही टेंशन होता है, फिर भी मुझे क्यों अल्सर हो गया या मुझे क्यों सरदर्द होने लगा, तो इसका कारण यह ट्रांसपेरेंसी में हम देख रहे हैं कि डिजीज जो है वह डिजीज इज इक्वल टू, एक तो है ऑर्गेनिक फैक्टर्स, कल आपको जीन्स की भी बात कर रहे थे कि माता पिता से जो जीन्स हमने इनहेरिट किए हैं, हो सकता है कि हमारे कुछ ऑर्गन्स ऑलरेडी वीक है, तो एक तो है हमारे ये ऑर्गेनिक फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, साथ साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि खान पान में भी कई ऐसी बातें होती है कि जिसका भी उस ऑर्गन पर इफेक्ट हो सकता है, लाइफस्टाइल के कारण भी, प्लस स्ट्रेस कि कितना तनाव जीवन में है, डिवाइडेड बाय और भी कुछ बातें कि एक तो हमारी कॉम्पिटेंस कि हम किस प्रकार से सिचुएशन को डील करते हैं, भल तनाव है परंतु हमारी हैंडलिंग कैपेसिटी क्या है, साथ साथ कोपिंग स्किल्स कि उसको कोप करने की जो हमारी एबिलिटी है वह कैसी है, जिस प्रकार से प्रोफेशनल नॉलेज कि एक डॉक्टर है उससे स्ट्रेस है परंतु जिस डॉक्टर के पास पेशेंट्स को डील करने का नॉलेज बहुत अच्छा है तो भी उसकी इफेक्ट कम होगी, परंतु जो डॉक्टर उसकी जो मेडिकल स्किल्स ही वीक है तो प्रोफेशनल स्ट्रेस भी उसकी बढ़ जाएगी और उसके सामने समस्या अधिक हो सकती है। प्लस यह भी एक बहुत बड़ी चीज है कि अवेलेबल सपोर्ट, कि लोगों का सपोर्ट उन्हें कितना मिलता है, परिवार का सपोर्ट, मित्रों का सपोर्ट, और जो साथ में काम करने वाले लोग हैं उनका सपोर्ट उस व्यक्ति को कितना मिलता है। तो अगर यह चीजें अधिक है तो बीमारी कम होगी, अगर यह चीजें कम है तो बीमारी होने की संभावना है वह भी बढ़ सकती है। तो इसके आधार से हम यह देखते हैं कि किस प्रकार से तनाव वह एक बहुत बड़ी समस्या कर सकता है। साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो बात है, और एक प्रयोग हुआ है, बल थोड़ा सा ये टेक्निकल प्रयोग है, फिर भी आप सभी इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, थोड़ा ध्यान देना। चूहों को चार ग्रुप्स में बांटा गया, उदाहरण के लिए हर ग्रुप में 15-15 चूहे लिए गए, और वो ये चार ग्रुप में किसके आधार से बांटा गया। पहला ग्रुप तो ऐसा था कि चूहों को पकड़ के रखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया ताकि वो भाग नहीं सके, और पहला जो ग्रुप था उन चूहों को सिर्फ वह केज में पकड़ करके रखा गया और कुछ नहीं किया, क्योंकि वो फ्रीडम चली जाने से भी टेंशन होगा। फिर दूसरा ग्रुप ऐसा लिया गया कि जिन चूहों को भी इस पिंजरे में पकड़ा गया उस इंस्ट्रूमेंट में, और उनको छोटे छोटे शॉक दिए गए, थोड़े थोड़े समय के बाद उन्हें छोटे छोटे शॉक दिए गए, वो कुछ भी करे परंतु उनको शॉक मिलने ही है, कितनी भी कोशिश करे परंतु वो हर थोड़े समय के बाद उनको यह शॉक मिलते गए। ये दूसरा ग्रुप है, आपको जवाब देना इसलिए ध्यान देना। फिर तीसरा ग्रुप था कि जिनको भी उतने ही छोटे छोटे शॉक दिए गए, परंतु इसमें एक स्पेशल अरेंजमेंट यह की गई थी कि चूहे अगर अपना सर उसके सामने ही एक प्लेट होती थी, अगर अपना सर उस प्लेट पर दबा दे तो शॉक बंद हो जाता था। तो जब दो चार बार शॉक मिले तो वो चूहे समझ गए कि अगर यह शॉक से बचना है तो क्या करना चाहिए, सर को दबाना चाहिए, तो शॉक खत्म हो जाता है। तो वो बार बार ऐसा करने लगे कि जब भी थोड़ा भी शॉक मिले तुरंत लीवर को प्रेस करेंगे, शॉक खत्म हो जाएगा। फिर चौथा ग्रुप ऐसा था कि जिनमें भी इसी सब बातें थी, परंतु एक बार सर दबाने से वह शॉक खत्म नहीं होता था, जब वो 5 बार सर दबाएंगे तो 5वीं बार सर दबाने से वह शॉक खत्म हो जाता था, और यह भी थोड़े समय में चूहे सीख गए कि एक बार से नहीं होता है, वो करते रहो, तो अगर प्रेस करते रहो तो ये शॉक खत्म हो जाता है। तो वह ऐसा भी करने लगे, और काफी दिन तक एक्सपेरिमेंट चला, और उसके बाद जो जांच करने के लिए ऐसा किया जाता है कि उनके पेट में कितना अल्सर हुआ है, वह एक मापदंड है कि इनको एनिमल्स को कितनी स्ट्रेस हुई। तो उनको मार करके ये देखा गया कि इन सभी में अल्सर है वह किसको हुआ है। अभी आप शांति से सोच के बताइए कि कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा अल्सर हुए होंगे, जिनको सबसे ज्यादा स्ट्रेस किसको हुई होगी, कि आप हाथ उठाना प्लीज, साथ में नहीं बोलो, जिसको भी आता है हाथ उठाइए। हाँ सोचिए भले अभी भी, हाँ सभी सोचिए, हाँ किसको सबसे ज्यादा हुआ होगा। फर्स्ट को तो शॉक मिले ही नहीं ना, खाली पकड़ के रखा गया, फर्स्ट ग्रुप को सिर्फ पकड़ के रखा है, उनको कोई शॉक दिए नहीं, तो उनको कैसे ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ आप बताइए किसको ज्यादा हुई, एक सेकेंड। हाँ हाँ अच्छा, फोर्थ को ज्यादा हुआ, अच्छा हाँ क्या सेकेंड को, क्यों खड़े हो जाइए भले, हाँ क्यों करता। हाँ तो ये जो बात है कि सेकेंड ग्रुप को सबसे ज्यादा अल्सर हुए, क्योंकि वो कुछ भी करते थे उनको शॉक मिलते ही रहे, इसके कारण जब सबसे ज्यादा स्ट्रेस हुई। शायद आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि और एक प्रयोग हुआ है जिसमें यह पता चला कि जो नौकरी करने वाली महिलाएं हैं उनकी तुलना में जो महिलाएं घर में ही रहती है, घर का काम संभालती है, नौकरी नहीं करती है, उनको कैंसर बहुत ज्यादा होता है। तो जब यह बात देखी गई तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्यों, जो महिलाएं सिर्फ घर में रहती है वो तो घर का काम करती है, खाना बनाती है, उनको तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, जो महिलाएं नौकरी करती है उनको तो बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर होता है। तो फिर रिसर्चर्स को ऐसा लगा कि हो सकता है कि किचन में कोई ऐसी चीज है कि जो कैंसर करती है, तो वो लोग ढूंढने लगे कि भी किचन में क्या कोई ऐसी चीज है जो कैंसर निर्माण करती है। फिर और एक बात सामने आई कि कुछ गरीब महिलाएं कि जो किसी के घर में जाके खाना बनाती है, तो ऐसी महिलाओं को भी कैंसर कम होता है। फिर लगा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो औरों के घर में जाके भी खाना बना रही है फिर भी इनको कैंसर नहीं हुआ है। तब अंत में यह निर्णय लिया गया कि जो महिलाएं घर में रहती है उनको इसलिए ज्यादा कैंसर होता है क्योंकि फीलिंग ऑफ बीइंग ट्रैप, उनको यह होता है कि बस हम बंधन में आ गए, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, थोड़े से पैसे भी खर्च करने हो तो किसी को पूछना पड़ता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी ये जो फीलिंग है द सेंस ऑफ बीइंग टैप, वह ज्यादा स्ट्रेस करती है। तो इन चूहों में भी वही हुआ कि शॉक मिला, कुछ भी किया परंतु उससे बच नहीं सके। अच्छा, फिर उससे ज्यादा किसको हुआ होगा? हाँ, दूसरा? हाँ, अच्छा, पांच बार जिसने किया उसको, अच्छा ठीक है, जो पांच बार कर रहे हैं। और क्या? हाँ, फर्स्ट ग्रुप वालों को नहीं, थर्ड नंबर में हुआ, भले वैसे ही थे, कुछ कर नहीं रहे थे, उनको शायद शॉक भी नहीं मिले, लेकिन फिर भी जो पकड़ के रखा गया, उनकी जो फ्रीडम चली गई, वो फ्रीडम चली गई, वो भी स्ट्रेस थी। और उसके बाद पांच नंबर को, ये भी पांच बार करने से भी, और फिर वो करने लगे क्योंकि कुछ एक्टिविटी की, वो एक्टिविटी करने से भी भले स्ट्रेस तो हुई शॉक्स की परंतु ओवरऑल कम हुई। और जो सबसे कम किसको हुई? जो एक बार प्रेस करने से जिनका शॉक खत्म हो गया। तो थोड़ा सा पुरुषार्थ करने से इसमें जो समझने की बहुत अच्छी बात है कि भल परिस्थितियां तो टेंशन वाली आएगी परंतु कुछ बातें कर करके अगर हम टेंशन को खत्म कर सकते हैं तो उल्टा जो इंटरनल जॉय का अनुभव होता है, एक इंथुजियाज्म का अनुभव होता है, और वो पॉजिटिव इंथुजियाज्म भी जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। यह कोर्स में जो सबसे पहला सेशन पूरा लिया गया है, हाँ जी, कुछ कुछ सबसे ज्यादा तो कि भी जिनको शॉक मिलते ही रहे, उन्होंने कुछ भी किया परंतु फ्री नहीं हुए, तो नहीं, उनको सबसे ज्यादा हुई। अभी हमारे पास समय कम है, आपको प्रॉब्लम हो तो बोले पर्सनली भी आप पूछ लेना कि इस स्ट्रेस मैनेजमेंट और राइट थिंकिंग कोर्स में सबसे पहला जो हमने लेसन लिया है ओवरव्यू के बाद वह है कि व्हाट इज स्ट्रेस, नो योर स्ट्रेसर्स। क्योंकि आम तौर पर हम परिस्थितियों को ही दोषी समझते हैं कि ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आई इसके कारण स्ट्रेस हो गया। और साइकोलॉजिस्ट ने यह कोशिश भी की कि जिसमें यह ढूंढने की कोशिश की कि कौन सी परिस्थितियां सबसे ज्यादा तनाव निर्माण करती है, और उसका एक लिस्ट बनाया गया है कि जो भी हम आपको इस सेशन में बताएंगे कि किस प्रकार से यह इन्वेंशन हुई। और इस इन्वेंशन में यह पता चला कि डेथ ऑफ नियर रिलेटिव, हस्बैंड एंड वाइफ या तो पेरेंट्स जो हमारे से बहुत क्लोज है, उनकी डेथ हो जाना वह सबसे ज्यादा स्ट्रेस निर्माण करती है। दूसरी बात यह पाई गई कि जब किसी का डिवोर्स होता है तो वह भी लोग उसको बहुत तनाव के रूप में लेते हैं। इसी प्रकार से जब व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है, लंबे समय की बीमारी आती है, या तो जब घर में किसी की शादी है और उसके लिए सब तैयारियां करनी पड़ती है, जो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, तो वह भी स्ट्रेस निर्माण करती है। और ऐसे ही बहुत छोटी छोटी बातें भी इसमें थी जो बल टेंशन कम करती थी। उदाहरण के रूप में कि भी ट्रैफिक सिग्नल है, वहां पर पुलिस नहीं है, और आपको पक्का पता है कि रेड लाइट है परंतु पुलिस यहां नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्रॉस करके जाएंगे। हाँ, अधिक लोग क्रॉस कर देंगे, परंतु कहते वह भी थोड़ा सा भी मामूली भी स्ट्रेस करती है। जैसे जो प्रेम भाई ने कहा कि भी वैकेशन पे जाना, भले छुट्टियों में जा रहे, रिलैक्स होने जा रहे, फिर भी क्योंकि उसमें आपको तैयारियां करनी है, प्रिपरेशन करना है, तो इसके कारण उसमें भी छोटी सी स्ट्रेस होती है। परंतु इसके साथ साथ और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखी गई कि जिसको यह सेशन में हम डिटेल में देखेंगे कि भल परिस्थितियां प्रेशर निर्माण करती है परंतु वह स्ट्रेस निर्माण नहीं करती। आज सिर्फ आपको एक ही हम उदाहरण देना चाहते हैं कि दो वर्कर्स थे एक मल्टीनेशनल कंपनी में और उन्होंने 20 साल तक वहां पर वर्कर के रूप में नौकरी की थी, तो दोनों को प्रमोशन दे दिया गया कि अभी तुम सुपरवाइजर बन जाओगे और तुम कई वर्कर्स का जो काम है वो सुपरवाइजर बन करके देखोगे। तो एक वर्कर को तो बहुत टेंशन हो गया कि अरे बाप रे मैं कैसे करूंगा, मैं लोगों को कैसे कंट्रोल करूंगा, और उसे इतना टेंशन हो गया कि उसने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले ली कि बाबा मेरे से काम होने वाला नहीं है। और जब दूसरे वर्कर को यह प्रमोशन दिया गया तो उसे बहुत खुशी हुई, उसने पार्टी भी दी अपने फ्रेंड्स को कि देखो मेरा प्रमोशन हो गया है और अभी मैं इस कार्य को अच्छी तरह से करूंगा। तो ऐसे जीवन में भी हमारे सामने अलग अलग परिस्थितियां आती है, परिस्थिति तनाव निर्माण नहीं करती है परंतु उस परिस्थिति के प्रति जो हमारा अप्रोच है, किस रूप से हम उस परिस्थिति का सामना करते हैं, उस परिस्थिति में भी हम क्या सोचते हैं, हमारा दृष्टिकोण क्या है, वह वास्तव में तनाव निर्माण करता है। और आगे चल करके हम इस बात को भी अच्छी तरह से समझेंगे। एक बहुत ही अच्छी नॉवेल लिखी गई है और इस नॉवेल में यह बताया है कि दुनिया के लोग कैसे हैं। वह जो नॉवेल का हीरो है वह इस दुनिया में आता है दूसरे प्लैनेट से, वो देखता है यहां के लोगों कि भी ये लोग कैसे हैं, कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और यह सारा देखने के बाद वो अंत में अपना निर्णय देता है कि भी दुनिया के लोग कैसे हैं। कहते कि दुनिया के लोग जो है ना वो मेजोचिस्ट है। मतलब क्या, ये दो साइकोलॉजी के टर्म्स है। एक है सैडिस्ट। सैडिस्ट वो व्यक्ति होता है कि जो दूसरों को दुख देता है, दूसरों को मारता है और कोई रीति से दुख देता है और उसे आनंद आता है, उसे खुशी मिलती है। मेजोचिस्ट ऐसा व्यक्ति है कि जो अपने आप को ही तकलीफ में डालता है, वो अपने आप के लिए समस्या बन जाता है। तो उसने कहा कि दुनिया के लोग, ये प्लैनेट जो अर्थ है, ये अर्थ के लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और फिर उसके बारे में कंप्लेन करते हैं। पहले प्रॉब्लम क्रिएट ही क्यों किया उन्होंने, अगर क्रिएट ही नहीं करते तो कंप्लेन करने की भी बात नहीं थी। तो यह वास्तव में हमारी आज की हालत है, हम सब की। भले एक नॉवेल है परंतु यह जो लिखी गई है वह हमारे मन को, हम जिस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं, उन बातों को देख करके ही लिखी गई है। थोड़ा सा हम इस ओवरव्यू में यह भी देख ले कि यह स्ट्रेस शब्द क्या है। वास्तव में भल आज स्ट्रेस शब्द बहुत ही पॉपुलर हुआ है। एक कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी भी कहता है कि आई एम अंडर स्ट्रेस, या बच्चों को भी आज स्ट्रेस है। आज कई बच्चों को इसीलिए स्ट्रेस है और वह स्कूल में जाना ही नहीं चाहते, उन पर इतना प्रेशर होता है कि वह बीमार हो जाना पसंद करते हैं परंतु स्कूल में नहीं जाते। तो यह स्ट्रेस शब्द, वह डिस्ट्रेसी, फ्रेंच, ओल्ड फ्रेंच में एक शब्द था डिस्ट्रेसी, उससे बना है कि जिसका अर्थ है नैरोनेस या ऑपरेशन, किस चीज को दबा देना, सप्रेस, ऑपरेश करना, उससे यह शब्द बना है। परंतु आखिरी जो धीरे धीरे करते स्ट्रेस शब्द है वह ज्यादा पॉपुलर बना। और थोड़ा अगर डिटेल में देखना हो कि स्ट्रेस से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस कोर्स में आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से क्या कदम उठाने चाहिए। तो स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए सबसे पहला कदम है डॉक्टर अली को कंसल्ट करो। वो डॉक्टर प्रेम भाई का दोस्त है, आपको फ्री में ट्रीटमेंट देगा। हाँ, डॉक्टर अली कौन है? हाँ, कौन है डॉक्टर अली, आप जानते हैं? नहीं जानते? हाँ, आप जानते कौन है? हाँ, कौन? शिव बाबा। अच्छा, किसी का अल्लाह? और कोई? और बताए डॉक्टर अली कौन है? कौन है? आत्मा। अच्छा, कहते डॉक्टर अली आत्मा है, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं डॉक्टर अली कौन है। डॉक्टर अली है, ए स्टैंड्स फॉर accept. L stands for listen. And I stands for introspect. तो एक बहुत ही पावरफुल है डॉक्टर कि जो हमारे बहुत सारे टेंशन को खत्म कर सकता है. और एक्सेप्ट अर्थात कि आज कई बार हमें टेंशन इसलिए होता है क्योंकि हम स्वीकार ही नहीं करते. हम उल्टा उसे दूर भागने की कोशिश करते हैं या तो अपने आप को गलत तर्क बताते हैं कि कोई टेंशन नहीं है. ऐसा तो होता रहता है जीवन में, यह बात तो है ही, मैं कोई टेंशन में नहीं हूं. हो सकता है कि हमारा अगर स्ट्रेस लेवल चेक किया जाए तो बहुत ज्यादा होगा. तो इसलिए जब थोड़ा सा भी तनाव आए, हम सेकेंड लेसन में स्ट्रेस की डेफिनेशन भी देखेंगे कि इसके आधार से हमें इसे समझ करके एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मेरे सामने प्रॉब्लम है, मैं नर्वस हो रहा हूं, या तो मैं इस परिस्थिति को हैंडल नहीं कर सकता हूं, मैं टेंशन में आ गया हूं, मैं नाराज हो गया हूं. जब हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर दूसरा भी एक इंपॉर्टेंट कदम उठा सकते हैं. और उसके बाद दूसरा कदम है लिसन, अर्थात कि टेंशन को सुनो. शायद आपको आश्चर्य होगा कि क्या पागल जैसी बातें करते हैं, क्या टेंशन को भी सुनना होता है. परंतु सचमुच जब भी तनाव आता है तो वह एक संदेश लेकर के आया है, वह एक मैसेज लेकर के आया है. और वह मैसेज को अगर हम नहीं सुनेंगे, आप अगर ऑफिस में काम करते हैं और प्यून आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर के आता है, आप तब और कामों में बिजी रहते हो और उस मैसेज को नहीं सुनते. एक घंटे के बाद वो आप उस मैसेज पर ध्यान देते हैं तो हो सकता है कि तब तक बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया हो. और कहते कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज अ काइंड ऑफ अ पेन, दर्द है स्ट्रेस. जब हमें शारीरिक दर्द होता है, हम सबको कोई ना कोई फिजिकल पेन होता है, तो क्या आप समझते हैं कि भी ऐसी कोई दवाई दे दे सचिन भाई की दर्द हो ही नहीं. ठीक है, ऐसी कोई दवाई दे कि सर दर्द हो ही नहीं, पैरों में दर्द, कमर का दर्द हो ही नहीं. हाँ, अच्छा ऐसा बताइए, जो डॉक्टर नहीं है वो बताओ, अच्छा है कि दर्द ना हो? होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? हाँ, वो संकेत देता है. राइट, हाँ हाँ ठीक है. नहीं आज आप ठीक है. हाँ, जैसे आज आप में से जिनको भी डायबिटीज होगा, या तो आप जानते भी होगे ऐसे पेशेंट्स को, कईयों को बिल्कुल दर्द खत्म हो जाता है, भी पैरों में दर्द होता ही नहीं, पता ही नहीं चलता है. परंतु इनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है. एक तो कई बार उनके पैरों में मोटी कील अंदर चली जाती है और सालों साल उनको पता नहीं होता है. या तो कहीं पैर जल गए, बहुत ज्यादा नहीं जल जाए तब तक उनको पता नहीं चलता है कि पैर जल गए. तो ऐसे ही स्ट्रेस भी आवश्यक है. कहीं भी स्ट्रेस आवश्यक नहीं है, परंतु प्रॉब्लम्स होना, समस्याएं आना, वह समस्याएं आना आवश्यक है. और फिर भल हम उसको ठीक से सुने, ठीक से समझे, अपने आप में परिवर्तन लाए, तो वह स्ट्रेस हमें बहुत फायदा भी कर सकता है. वह हमारे लिए एक प्रगति का बहुत बड़ा कारण बन सकता है. तो इसलिए क्या करो, जब भी स्ट्रेस आता है तो पहले सुनो. अब कैसे सुनेंगे कि किसी ने हमारी टीका कर दी, या तो आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ, तो हम अपसेट हो जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं. तो तब पहले तो हम अपने आप को ही सुने कि मुझे क्या हो रहा है, क्यों यह तकलीफ हो रही है. दूसरों को दोषी ठहराने के बदले हम यह सोचे कि मेरा दोष कहां है, मेरी गलती कहां है. और जब हम अपनी गलती के बारे में ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें जरूर मिलती है वह गलती, और उस अनुसार अपने आप को हम परिवर्तन भी कर सकते हैं. वैसे हर बात में इसके विषय भी पूरा एक लेक्चर लिया जा सकता है कि किस प्रकार से हम तनाव को सुने, जागृत हो जाए, और फिर वह जो हमें संदेश दे रहा है उस अनुसार हमारे विचारों में, हमारी जीवन प्रणाली में, आहार में, हर बातों में अगर परिवर्तन लाते जाए तो भी स्ट्रेस कम होगा. और तीसरा है इंट्रोस्पेक्ट, सुनने के बाद जो थोड़ा मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वह इंट्रोस्पेक्शन करे कि क्या होना चाहिए, मेरी गलती कहां पर थी। वास्तव में हमें औरों को दोष नहीं देना चाहिए। एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में यह भी अनुसंधान हुआ कि जहां आने वाले बहुत बड़ी संख्या के लोग, क्योंकि रोज काफी पेशेंट आते थे और उस डिपार्टमेंट में जो भी आता था कोई ना कोई उसको साइकोलॉजिकल बीमारी थी, तो इन सभी को और भी बातें पूछी गई, परंतु साथ साथ में यह भी एक प्रश्न पूछा गया कि आपको यह जो मानसिक बीमारी हुई है उसका आप कारण क्या समझते हैं, आपकी बीमारी का कारण वास्तव में कौन है। तो रिसर्चर्स को भी यह जानकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि 81% पेशेंट्स ने यह कहा कि मेरी मानसिक बीमारी का कारण और कोई है। एक जवान महिला थी जिसे सरदर्द हो रहा था, तो उस जवान महिला को जब यह पूछा गया कि भी आपके सरदर्द का क्या कारण है, तो उसने तुरंत एक सेकंड में कहा मेरी सांस मेरे टेंशन का कारण है, मेरी सांस बहुत प्रॉब्लम करती है और वो सहयोग नहीं देती, इसके कारण मुझे स्ट्रेस है। और ऐसे एक बूढ़ी महिला की जिसे निराशा की बीमारी थी, डिप्रेशन की बीमारी थी, तो उसको भी यह जब प्रश्न पूछा गया तो उसने क्या कहा होगा, उसने तुरंत कहा कि मेरी बहू है वह मेरे डिप्रेशन का कारण। भल एनवायरमेंट भी, परिस्थितियां भी समस्या निर्माण करती है, परंतु वह वास्तव में स्ट्रेस निर्माण नहीं करते। तो अगर ठीक प्रकार से ऐसे हम इंट्रोस्पेक्ट करके अपनी कमियों को ढूंढ निकाले तो भी टेंशन को कम करने में मदद मिल सकती। एक बार आपने डॉक्टर अली को कंसल्ट कर लिया, फिर डॉक्टर अली आपको कहता है कि भी स्ट्रेस कम करने के लिए 4 C's को एडॉप्ट करो, फॉलो 4 C's ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये 4 C's क्या है? सबसे पहला है चैलेंज, दूसरा है कोप, तीसरा है डू थिंग्स विच आर अंडर योर कंट्रोल। ये आपको मैनुअल में भी मिलेगा, लेकिन आप एग्जाम्पल नोट कर लो। और चौथा है कम्युनिकेट। तो अब ये 4 बातें क्या है? चैलेंज का अर्थ है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आता है तो उसके 2 रिस्पॉन्स हो सकते हैं। एक तो उससे डरना, भागने की कोशिश करना, अवॉइड करने की कोशिश करना, और दूसरा है कि उसका सामना करना, एक चुनौती के रूप में उस परिस्थिति को लेना। और जब भी हम कोई परिस्थिति को चुनौती के रूप में लेते हैं तो कोई समस्या हमारे सामने आती है तो उसके कई पहलू होते हैं, कि जैसे भी ये उंगलियां हैं वो अलग अलग उस समस्या के हिस्से है, उस समस्या के पहलू है। जब हम उसे डर के रूप में लेते हैं तो 1-2 पहलुओं को ही हम डील कर पाते हैं, उसको कोप कर पाते हैं, और जो दूसरे पहलू है उसको हम ठीक प्रकार से डील नहीं कर पाते, और ये जो है वो बहुत बड़ा टेंशन निर्माण करती है। परंतु जब भी कोई परिस्थिति को हम चैलेंज के रूप में लेते हैं, एक चुनौती के रूप में लेते हैं, तो हमारा ब्रेन पावर बढ़ जाता है, और जो कैपेसिटी बढ़ जाने से हम उसे कंप्लीटली कोप कर सकते हैं, और जब उसे हम अच्छी तरह से डील कर पाते हैं तो कोई भी टेंशन नहीं रहता। लार्सन एंड टुब्रो में एक मैनेजर थे, उस मैनेजर को दूसरे शहर में एक प्लांट शुरू करने के लिए अपॉइंट किया गया। जब पहले उन्हें यह कहा गया कि आपको दूसरे शहर में जाकर के यह प्लांट शुरू करना है, तो वो बहुत डरे। उनको लगा कि ये नया शहर है, घर से दूर जाना पड़ेगा, मैं वहां कैसे रहूंगा। परंतु उनकी पत्नी ने उन्हें सपोर्ट किया कि तुम डरो नहीं, चैलेंज के रूप में इस परिस्थिति को लो। अगर प्लांट शुरू नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है, कंपनी तो आपको पे करने वाली है, आप उसकी कोई चिंता नहीं करो, वहां जाके कोशिश करो, अगर स्टार्ट हो जाए तो अच्छा है। और करीब 8 मास के बाद जब यह प्लांट शुरू हुआ तो उन्होंने स्वयं एक वर्कशॉप में अपना यह अनुभव सुनाया कि इसके बाद मेरा विश्वास इतना बढ़ गया कि अब मुझे लगता है कि विदेश में भी अगर भेजा जाए तो विदेश में जाकर के भी मैं यह प्लांट शुरू कर सकता हूं। तो इस प्रकार से कोई भी समस्या हो, सबसे पहला हमारा यह रिएक्शन होना चाहिए कि मुझे इससे डील करना है, चैलेंज के रूप में लो। इसीलिए कहा गया है कि आजमाइश कड़ी हो तब ही मजा आता है, तब तो हम आग को गुलजार बना देते हैं, गुलजार मतलब बाग। तो इसलिए प्रॉब्लम्स आने चाहिए, अगर प्रॉब्लम्स नहीं होंगे तो भी एक विशेष सिंड्रोम है, हम आपको बताएंगे दूसरे सेशन में, जिसको कहते हैं ROSS, रॉस की रस्ट आउट स्ट्रेस सिंड्रोम, कि किसको जंक लग जाती है। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपके सामने, स्टिम्युलेशन ना हो, तो जैसे जंक लगता है ऐसे ही हमारे बॉडीली पार्ट में, माइंड में भी जंक लग जाएगा और हमारी कैपेसिटी उल्टी डाउन होती रहेगी। दूसरी बात है कोप, रस्ट आउट। मैं आपको बताऊं, सेकंड सेशन की यह बात है वास्तव में। ऐसे आप बीच बीच में उनको कुछ बोल दो, अभी ये सारा जो ओवरव्यू का सेशन है उसमें हमारे ऑब्जेक्ट ये है कि बल इस सेशन से भी हम उनको कुछ अच्छी बातें बताना चाहते हैं कि जिससे पार्टिसिपेंट्स को लाभ हो, परंतु हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि आखिरी आपको जो फुल कोर्स कराने के लिए तुरंत निमंत्रण मिल जाए। बार बार ये नहीं कहो कि हम आगे बताएंगे, तो भी बुरा लगता है कि ये सब छुपा रहे, हमको कुछ बोल नहीं रहे। मैक्सिमम चीजें बताए, परंतु कहीं कहीं तीन चार बार अगर ये बता दिया जाए कि इस लेसन में इस बात को हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो लोगों का इंथुजियाज्म है, वो इंथुजियाज्म बनेगा। सेकेंड है कोप, जो हमारी कोपिंग स्किल्स होती है, वह हो सकता है कि भी अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग व्यक्ति की डिफरेंट होती है, कि हमारी जो कोपिंग स्किल्स है, अगर हम लाइफ को कुछ हिस्सों में बांट दे कि एक तो हमारा व्यक्तिगत जीवन, दूसरा है पारिवारिक जीवन, तीसरा है जहां आप काम करते हैं वहां का आपका जीवन, और कहे भी सोशल लाइफ, तो ऐसे अगर हम कुछ हिस्सों में हमारी लाइफ को बांट दे तो हरेक में उसका सामना करने की हम स्ट्रेस नहीं है। परंतु जब मैं ऑफिस में जाता हूं तो क्योंकि मेरे में वो कोपिंग एबिलिटी नहीं है प्रॉब्लम्स को डील करने की, लोगों के साथ व्यवहार करने की, तो वहां पर बहुत टेंशन हो जाता है। तो जब भी परिस्थितियां भी हमारे ऊपर एक डिमांड निर्माण करती है, और वो जो डिमांड है उससे हमारी कैपेसिटी डील करने की ज्यादा होगी तो टेंशन नहीं होगा, अगर डील करने की कैपेसिटी कम हो गई तो टेंशन होगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं कि जिनकी ऑफिस में वो अकाउंटेंट थे, तो ऑफिस में उनकी वर्किंग कैपेसिटी इतनी अच्छी थी कि उनको 0.1% भी टेंशन नहीं होता था, परंतु घर में बीबी के साथ डील करने की उनकी वर्क कोपिंग एबिलिटी इतनी लो होती थी कि वह रात को 10:30 बजे तक घर नहीं जाते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं घर गया तो टेंशन होने वाला है। कभी अगर जल्दी भी पहुंच गए, वह बंबई में रहते थे, तो रेलवे स्टेशन पर 10 बजे तक बैठे रहेंगे परंतु घर नहीं जाएंगे। तो यह क्लासिकल उदाहरण है कि कैसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हमारी कोपिंग एबिलिटी डिफरेंट होती है, और ये फाइंड आउट करिए कि भी कहां पर मेरी कम है, और जहां भी मेरी कोपिंग एबिलिटी कम है उस क्षेत्र पर विशेष अटेंशन देकर के उसे मैं बढ़ाऊं तो भी मेरा वहां का जो स्ट्रेस लेवल है वह कम हो सकता है। सेकंड है जो चौथी बात भी हम ले लेते हैं, तो हमने कोप के बारे में दिया, जो तीसरा पॉइंट प्रीवियस, थर्ड जो पॉइंट है वह है कंट्रोल, अर्थात कि जब भी तनाव सामने आता है तब हम कंप्लेन करने के बदले यह सोचे कि मेरे कंट्रोल में क्या है, और कितनी न विकराल परिस्थिति हो परंतु हर परिस्थिति में कोई न कोई बात तो हमारे कंट्रोल में जरूर होती है, और जो भी कंट्रोल में है वह करने लगी। आप में से कुछ लोगों ने डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा, हाँ किसी ने सुना है, हाँ और किसने, हाँ कौन है स्टीफन हॉकिंस, हाँ उठिए आप बोलिए, हाँ वो खड़े हो जाइए, हाथ उठाया ना जिन्होंने, कौन है स्टीफन हॉकिंस, एक एक सेकेंड ना, कौन कौन है, हाँ नहीं नहीं स्टीफन हॉकिंस, यहाँ किसने हाथ उठाया, हाँ हाँ स्टीफन हॉकिंस ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर है, जिस चेयर पर आइंस्टाइन बैठते थे उसी पोजीशन पर स्टीफन हॉकिंस थे, और कुछ समय पहले उनको एक पैरालिसिस की, डिस्ट्रोफिया की बीमारी हुई जिसमें उनके सारे अंग पैरालाइज हो गए, और इतना उनके सारे अंग पैरालाइज हो गए कि वो अपने लार को भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे, सलाइवा भी उनके मुंह से निकलता रहता था, किसी नर्स को वह सलाइवा ठीक करना पड़ता था। तो सोचिए अगर आपको ऐसी बीमारी हो तो क्या होगा, क्या होगा डॉक्टर साहब, आपको ऐसी बीमारी हो तो क्या होगा, नर्वस हो जाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, क्या होगा, आत्महत्या कर लेंगे, होपलेस हो जाएंगे, तो नॉर्मल रिस्पॉन्स यही सब होगा। बल स्टीफन हॉकिंस भी थोड़ा समय डिप्रेस्ड हुए होंगे, परंतु बहुत जल्द उन्होंने अपने कंट्रोल में था, वह करने लगा। और जैसे कहते हैं कि भाई हर बात में कोई ना कोई अच्छाई होती है, तो इनके सामने भी इतनी बड़ी समस्या आई, फिर भी उसमें एक अच्छी बात यह थी कि उनका ब्रेन बिल्कुल ठीक, उनका दिमाग एकदम व्यवस्थित कार्य कर रहा है, और उनकी उंगलियां भी ठीक से काम करती हैं। तो इसलिए जो उनके कंट्रोल में था वह करने लगे, अपनी जो उनकी थियोरीज थी उसको वह नया बनाने लगे, उसमें कुछ चेंजेस लाने लगे, और वह इतने प्रसिद्ध हुए कि जब भी उनके लेक्चर्स होते थे, लंबी कहानी है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, कि जब जब भी उनके लेक्चर्स होते हैं तो बड़े बड़े प्रोफेसर वो अटेंड करने के लिए आते हैं, हालांकि वो बोल नहीं सकते, सिंथेसाइजर के द्वारा थोड़ा थोड़ा बोलते हैं और कंप्यूटर पर अपने प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। और जब वह बंबई में आए कुछ साल पहले तो पता है न्यूज़पेपर्स में टाइटल आया था, किसको पता था, दिल्ली में भी आया था, क्या था टाइटल, क्या था टाइटल न्यूज़पेपर में, टाइटल क्या था, हाँ और किसी को पता है, न्यूज़पेपर में टाइटल था फ्रंट पेज पर, एशियन एज ने फ्रंट पेज पर यह टाइटल दिया हीरो नंबर वन। तो आज हम उनको ज्यादा सम्मान क्यों दे रहे हैं, यही स्टीफन हॉकिंस, अगर उन्हें कोई बीमारी नहीं होती तो इतना रिस्पेक्ट लोग उन्हें नहीं देते, क्योंकि ये सभी समस्याओं के बीच में उनके जो कंट्रोल में है वह कर रहे हैं। ऐसे कितनी ना डिफिकल्ट परिस्थितियां, बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं कि जिसमें लोगों के सामने सीरियस प्रॉब्लम आए कि जो हमारे सामने नहीं आते हैं, फिर भी उन्होंने जो अपने कंट्रोल में था वह करते रहे तो प्रॉब्लम ठीक हो गया। ऐसे छोटी सी भी बात हमारे कंट्रोल में हो कि भी हम कुछ अच्छा पढ़ सकते हैं, कोई कार्य कर सकते हैं, अपने आप की संभाल कर सकते हैं, वह कार्य करते रहे, कम से कम हम विचारों को अच्छा बनाए रखें कि भी जो भी हो रहा है उसमें कुछ फायदा होगा, मेरा मन शांत है, यह दिन भी बीत जाएंगे। ऐसे कोई ना कोई अच्छी बात हम बार बार अगर रिपीट करते रहते हैं तो भी जो नेगेटिव इफेक्ट हो रही है वो प्रॉब्लम का, वो नेगेटिव इफेक्ट कम होगी। और चौथा था, क्या था, कम्युनिकेट। प्रॉब्लम्स भी क्यों आते हैं, क्योंकि हम अपने तक ही सीमित रखते हैं। कल भी सतीश गुप्ता यह बात बता रहे थे, भले इस सारे कोर्स में भी आप देखेंगे, अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूं हमने स्पेसिफाई किया है लेसन्स, जिस प्रकार से आप हमारा आध्यात्मिक ज्ञान का 7 डेज का कोर्स कराते हैं, तो पक्का है कि पहले दिन आत्मा का परिचय देना है, दूसरे दिन परमात्मा का परिचय देना है, तीसरे दिन परमात्मा के कर्तव्य बताने हैं, भले हर व्यक्ति थोड़ा उसे मॉडिफाई करके अपने तरीके से भिन्न रूप से भी बताता होगा, ऐसे ही इस कोर्स का भी लक्ष्य है कि पहला सेशन है वह ओवरव्यू का, और फिर जब आपको निमंत्रण मिले तो जैसे हम बताएंगे उस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप वो अगर हम लेसन्स ले, भल हमने जो कुछ ऐसे भी आपके सेशंस लिए हैं, क्योंकि वह हमारी फैकल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत नॉलेजेबल भी है, वो एक्सपर्ट है अपने अपने फील्ड में, तो इसके कारण एडिशनल टॉपिक्स भी आपके लिए हैं, तो उससे आप कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कल जो सतीश भाई ने बताया, तो वो जो पर्सनालिटी की बातें वो हम ले सकते हैं कि जब हम अपने आप तक रखते हैं तो वो चीज सप्रेस होती जाती है, और सप्रेस होते होते अल्टीमेटली वो बीमारी का रूप ले लेती है। परंतु क्या करना चाहिए कि भल सारा दिन बोलते नहीं रहो, ये भी बुरा है कि कोई प्रॉब्लम आया जो मिले उसे पकड़ के हम अपना दुख सुनाते जाए, वह भी अच्छी बात नहीं है। परंतु दो चार भी जो अच्छे दोस्त है जो हमारी बात को सुन रहे हैं, हमारी बात को समझ रहे हैं, वह तो उनको आप जरूर बताइए, कम्युनिकेट करिए, भल समझा करके भी कम्युनिकेट करिए, और इस रूप से बोलिए कि दूसरे को बुरा नहीं लगेगा। परंतु जब हम एक्सप्लेन करेंगे कोई प्रॉब्लम को तो मन भी हल्का हो जाता है और साथ साथ में उसका समाधान भी मिल सकता है। हाँ, वही पहले सेशन से पहले ही आपको जो भी कहा था वो फिजिकल तैयारी करनी है वो कर करके आइए। ओके, ठीक है, चलो, इट्स फॉर ह्यूमर। तो दीज आर फोर सीज, ये अधिक भी है परंतु ये एटलीस्ट जो बेसिक चार बातें वो हम उनको जरूर बताएं। एक बहुत बड़ी गलत बात जो तनाव मुक्ति के बारे में हम लोगों को बताना चाहते हैं वह यह है कि कई लोग यह समझते हैं कि थोड़ा बहुत टेंशन जीवन में जरूरी है, थोड़ा स्ट्रेस आना चाहिए, जब थोड़ा स्ट्रेस होता है तभी हम काम करते हैं। और उसका जो आमतौर पर उदाहरण दिया जाता है कि कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी वर्ष की शुरुआत में 2 घंटा भी नहीं पढ़ पाते, परंतु जब एग्जाम को 15 दिन बचे होते हैं तो कितना पढ़ते हैं, 18 घंटा भी पढ़ सकते हैं। तो कहते हैं देखो एग्जाम का भी इनको टेंशन आ गया तो वह स्ट्रेस के कारण ये ज्यादा पढ़ने लगे, उनका जो परफॉर्मेंस है वह परफॉर्मेंस बढ़ गया। परंतु यह बात गलत है। किस प्रकार से गलत है, अगर वही उदाहरण हम कॉलेज के स्टूडेंट्स का उदाहरण ले तो जो विद्यार्थी उसे चैलेंज के रूप में लेते हैं, एग्जाम के कारण जिनका मोटिवेशन है वो बढ़ता है, तो जब तक उनका मोटिवेशन है या तो वो कंसर्न की स्टेज में है तब तक उनका परफॉर्मेंस बढ़ता है। परंतु जब वो मोटिवेशन वो टेंशन का रूप ले लेता है, जो लाल रेखा है उसके इस ओर चला जाता है, तो तब उल्टा उनका परफॉर्मेंस काफी कम हो जाता है। और उसका प्रमाण है कि ऐसे विद्यार्थियों को लूज मोशन होने लगते हैं, या तो एक विशेष बीमारी है जिसको कहा गया है एग्जामिनेशन फीवर, कि एग्जाम के दिनों में उन्हें बुखार हो जाता है, भल उस बुखार का कोई और कारण नहीं है, परीक्षा का डर ही उसका कारण है। तो स्ट्रेस वास्तव में एडवाइजेबल नहीं है, और जिस बात को हम कहते हैं कि भी यह इसके कारण हमारी कैपेसिटी बढ़ी, हमारा परफॉर्मेंस बढ़ा, उसको हम मोटिवेशन नाम देंगे, उसको हम कंसर्न कहेंगे, परंतु टेंशन और स्ट्रेस नाम नहीं देंगे। जब भी वह स्ट्रेस का रूप ले लेता है तो परफॉर्मेंस ऑलवेज कम होता है। और उसमें जो बायोकेमिकल चेंजेस है, इस और जो लिखा गया है कैटेकोलामाइंस नाम के भी कुछ केमिकल्स हमारे शरीर में निकलते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब भी कैटेकोलामाइंस को रिलीज होते हैं, परंतु वह बुरे नहीं है, वह शरीर पर जो हार्मफुल इफेक्ट डालनी चाहिए वो नहीं डालते हैं। परंतु जो दूसरा एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्रंथि है कि जो यह हार्मोन्स रिलीज करती है, कि जब भी कॉर्टिसोल रिलीज होने लगता है तो शरीर पर हार्मफुल इफेक्ट होती है, यहां तक कि ब्रेन पर भी उसकी हार्मफुल इफेक्ट होती है। तो इसलिए स्ट्रेस इज हार्मफुल, मोटिवेशन इज गुड, और हमें पूरी यह कोशिश करनी चाहिए कि मोटिवेशन की स्टेज में हम रहे और स्ट्रेस को जितना हो सके उतना हम कम कर दें। उसी को आप यू स्ट्रेस कहिए। अभी ये जो मोटिवेशन की स्टेज है, उस मोटिवेशन की स्टेज को आप यू स्ट्रेस भी कह सकते हैं। एक रूमी पोएट ने यह बहुत ही अच्छी बात बताई है कि जो शायद स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे पावरफुल तरीका है, उन्होंने कहा है कि वी आर अनकंडीशनल स्पिरिट्स ट्रैप्ड इन कंडीशंस एज द सन इन एक्लिप्स। सन जिस प्रकार से ग्रहण लगता है तब वह ट्रैप होता है, तो ऐसे हम भी वास्तव में तो स्ट्रेस फ्री है टोटली, वी आर अनकंडीशनल स्पिरिट्स, लेकिन जो हमने कंडीशंस बना ली है कि भी ऐसा हो तो ही मैं जीवन में सुखी हूं, यह हो जाए तो ही मेरे लिए अच्छा है, तो इसके कारण हमें स्ट्रेस आती है। अगर वो कंडीशंस को हम खत्म कर दें, मन को कंट्रोल करने वाली जो चीजें हैं वह बाह्य न हो, वह चीजें आंतरिक हो, कि हम अपने विचारों के द्वारा अपने मन की स्थिति को भी अगर परिवर्तन करते जाते हैं, उसका आधार कोई भी बाह्य चीज न हो। कहते हैं कि अगर आपने एक नई गाड़ी खरीदी है तो कितने साल के बाद पुरानी होती है? 5 साल 10 साल कितने साल के बाद? कई बार ये जवाब मिल जाता है, कई बार नहीं भी मिलता है। हाँ, तो पूछो लोगों को, और वह हमारी गाड़ी आप 5 साल भी चला रहे हो, आपको पता नहीं कि भी मेरी गाड़ी पुरानी हो गई, परंतु अगर पड़ोसी के पास नया मॉडल आ गया तो हमें लगने लगता है कि अरे रे मेरी गाड़ी पुरानी हो गई। तो यह है लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल, कि आपने आवश्यकताओं का नहीं सोचा परंतु आपने वह तुलना की। इस प्रकार से सचमुच हमारी अनकंडीशनल स्पिरिट की स्टेज रहे तो कोई स्ट्रेस नहीं होगी। और एक पूरा सत्र हम इस कोर्स में आपका लेंगे जो है थॉट मैनेजमेंट पर, क्योंकि विचार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं एक दिन में कितने हम विचार निर्माण करते हैं। अब पूछो, आप लोगों को सबको पता है, परंतु कई बार पार्टिसिपेंट्स को इतना पता नहीं होता है, कुछ लोगों को ही पता होता है कि टाइम मैगजीन में एक सारा आर्टिकल छपा है कि हम सारे दिन में कितने विचार करते हैं, और पता चला कितने, शायद के भी 20,000 से 30,000-40,000 जितने हम विचार करते हैं। और कैसे ये गिनती कैसे की गई, कि जब एक विचार आता है तो वह 1-2 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकता है, या तो आप उसी विचार को दोहराते हैं या वह विचार बदली हो जाता है। तो इससे आप गिनती करेंगे तो इतने हजारों विचार रोज आते हैं, और विचार तो ऐसी चीज है कि जो एक समय एक विचार नहीं होता है। हाँ, अभी सब आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? तो साथ साथ भले आप सुन भी रहे हैं, अभी मैं भी बोल रहा हूं तो भी मुझे दूसरे विचार आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे हैं। तो विचार, जैसे कि आप बड़े दिल्ली या बॉम्बे में गए हो तो एक साथ में सबर्बन ट्रेन पर 3-4 ट्रेन्स भी चलती है, तो ऐसे ही पैरेलल हमारी ट्रेन्स भी चलती रहती है। और जो भी हमारी सारी फीलिंग्स हैं, आपको अच्छी या बुरी जो भी फीलिंग्स आती है, तो फीलिंग्स का आधार क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, प्लीज प्लीज। हाँ, ये जो फीलिंग आई वो उसका बेस क्या है, उसका रूट, जैसे नहीं यू आर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आई अंडरस्टैंड। अच्छा, नहीं ये तो टाइम हो रहा है, सीरियसली ये बताओ कि जो भी हमें फीलिंग्स आती है लाइफ में, अच्छी या बुरी, उसका मूल क्या है? जैसे आप आपकी बीमारियों का मूल ढूंढते हैं कि इसका रूट कॉज क्या है, तो ऐसे हमारी फीलिंग्स का रूट कॉज क्या है? एक सेकंड उनको बोलने दो। हाँ, द बेसिस ऑफ ऑल अवर फीलिंग्स, तो नहीं ये तो हम मानते हैं, हम नहीं थक जाए, 4 बजे से उठते हैं तो कोई आपका दोष नहीं, हमने सिर्फ कोशिश ये की है कि भाई हर बात हर 2 मिनट में इंटरेस्टिंग है। तो बेसिस क्या निकला? विचार। तो अभी ये भी आप सीखो कि जब ऐसा कोई प्रॉब्लम आए आपके लेक्चर में तो कैसे उसको डील करना चाहिए, समझ गए? और हमारे टॉपिक्स की बात उनसे निकली कि जिस बात पर हम आ रहे थे कि भी सब फीलिंग्स का आधार हमारे थॉट्स हैं। हो सकता है कि भी कॉन्शियसली विचार नहीं भी आए, कई बार हम अपसेट हो जाते हैं, हम सोचते हैं मैंने तो सोचा ही नहीं अपसेट होने के बारे में, मुझे कोई नेगेटिव विचार नहीं आया, परंतु सुषुप्त लेवल पर भी वह थॉट था कि जिसके बारे में हम जागृत नहीं थे, तो इसके कारण वह नेगेटिव फीलिंग या तो पॉजिटिव फीलिंग आ सकती है। और ये जो हमारे विचार है वो बीज की तरह है,
नहीं सच मुच फ्री फील फ्री नो आई एग्री विथ हिम एज भी है उनकी एज भी है नहीं यंग जब हम होते हैं तो हम अटेंशन दे सकते हैं कुछ सीख सकते हैं जैसे जैसे एज होती है अटेंशन स्पैन भी कम होता जाता है हाँ खड़े हो जाइए मैं बाहर नहीं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं खड़े हो जाइए हाँ खड़े हो जाइए हाँ एक एप्पल में कितने बीज है आप गिन सकते हैं कोई जवाब नहीं देना एक एप्पल में कितने बीज है उसके सीड्स गिन सकते हैं तो नहीं ठीक है कि एक एप्पल में कितने बीज है वो गिन सकते परंतु एक बीज में कितने एप्पल है गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हाँ प्लीज से थैंक यू तो ये बात है कि भाई एक विचार से क्या निर्माण कितना निर्माण हो सकता है वो हम गिनती नहीं कर सकते तो इसके कारण जो विचार है वह एक सीड की तरह है और मनोविज्ञान का जो नियम हमें समझ में आया है अभी वह यह है कि हम किसी भी चीज से दूर नहीं जा सकते हैं परंतु हम किसी चीज के नजदीक जा सकते हैं बहुत ही समझने की बात है यह कि वी ग्रेविटेट इन द डायरेक्शन ऑफ अवर डोमिनेंट थॉट आप डर से दूर नहीं भाग सकते परंतु आप बोल्डनेस के करीब जा सकते हैं आप निर्भयता के करीब जा सकते हैं आप में से कईयों ने अनुभव किया होगा कि आपने बिल्कुल नए कपड़े खरीदे हैं एकदम फर्स्ट टाइम ही पहने हैं कपड़े और पुराने कपड़े तो आप रोज पहनते रहते हैं परंतु आपने अनुभव किया होगा कि भी वो जो नए नए हमने कपड़े पहने जिस दिन पहने उसी दिन गंदे हो जाते चाय गिर जाती है कुछ प्रॉब्लम होता है पुराने कपड़ों पर नहीं होता है क्यों हाँ क्योंकि हम बार बार सोचते हैं कि कहीं गंदे तो नहीं जाएंगे कहीं दाग तो नहीं लग जाएगा इसे बार बार हम सोचते रहते हैं तो इसके कारण हम उसी दिशा में आगे बढ़ते जाते ऐसे नई कार के लिए भी देखा गया है कि अपने ब्रांड न्यू नई गाड़ी ली है बनारसी भाई को अनुभव है दो चार दिन में स्क्रैच लग जाता है उसको पुरानी गाड़ी को नहीं लगते हम बिल्कुल केयरलेस होके चलाते हैं ना तो विचार जो है हमें उस दिशा में ले जाते हैं यह भी देखा गया है कि कई लोग ऑफिस में जैसे भाई साहब को अटेंशन नहीं दे पाए जैसे ऑफिस में भी 8 घंटा काम करना होता है तो 5-6 घंटे के बाद थोड़े थक जाते सोचते भी सो जाए नहीं ऐसे बॉस कभी भी नहीं आता है आपकी ऑफिस में रोज आप सारा दिन काम करते जिस दिन सो गए उसी दिन बॉस आके खड़ा हो जाता है तो ये भी क्यों क्योंकि हम सोचते थे अरे कहीं बॉस तो नहीं आ जाएगा मुझे थोड़ी बहुत नींद आ रही है सोने दो लेकिन जो सोच सोच करके विचार किया वो शायद वहां पहुंच गया और बॉस आया ऐसी बहुत सारी बातें हैं परंतु इन सब से हम ये कह सकते हैं कि जो हम विचार करते हैं उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं हम स्वास्थ्य के विचार करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा बनेगा सफलता के विचार करेंगे सफलता मिलेगी मेमोरी को बढ़ाने के विचार करेंगे हमारी मेमोरी बढ़ेगी तो इसीलिए थॉट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और एक आपका सारा लेसन लिया जाएगा इस कोर्स में कि जो हमारे थॉट्स है उसको सही तरीके से किस प्रकार से मैनेज किया जाए कितने प्रकार के थॉट्स होते हैं और विभिन्न एग्जाम्पल देकर के हम यह समझेंगे कि माइंड से मैक्सिमम हम किस प्रकार से प्राप्त करें कई लोग पॉजिटिव थिंकिंग को मुश्किल समझते हैं ऑलमोस्ट 1950 में एक किताब लिखी गई है पावर्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग डॉक्टर नॉर्मल विंसेंट पील आप भी भले नाम दो लोगों को विंसेंट पील ने यह किताब लिखी थी पावर्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग कि जिसकी लाखों प्रतियां बिकी और तब से काफी लोग पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में कहने लगे परंतु बहुत कम लोग समझते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या है और कई इसको मुश्किल भी समझते हैं क्या नाम पूछ रहे हैं नॉर्मन विंसेंट पील PEELE उसने बहुत सारी किताबें लिखी है इस प्रकार से मतलब ये आपको याद नहीं रहे तो भले नहीं भी कहो परंतु पॉइंट यहां यह है कि भी लोग यह समझते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग बहुत मुश्किल है ये हम कर नहीं सकते परंतु पॉजिटिव थिंकिंग भले आपको मुश्किल भी लगे, कम से कम राइट थिंकिंग तो डेफिनेटली पॉसिबल है. कि राइट थिंकिंग तो सचमुच पॉसिबल है. और राइट थिंकिंग क्या है? राइट थिंकिंग का जो आम अर्थ है कि भल आपके सामने समस्या है, परंतु समस्या जैसी है वैसी ही उसे देखे. अगर 20% प्रॉब्लम है तो उसे 80% नहीं बनाए. अगर वह 20% ही रहेगा तो भी टेंशन है वह कम होगा. एक एक्सरे स्पेशलिस्ट थे, एक दिन एक ब्रह्मा कुमारी बहन को रास्ते में मिले. वह सेंटर पर आते रहते थे, तो जब उनको देखा तो उनके चेहरे से ही पता चला कि भी ये बड़े उदास है, बड़े डिप्रेस्ड है. तो बहन ने और बातें पूछने के बाद यह भी पूछा कि भाई साहब क्या बात है, क्यों आज आप इतने उदास है? तो कहती, क्या कहूं बहन जी, पहाड़ टूट पड़ा है. मेरे बाजू में ही दूसरे एक यंग एक्सरे स्पेशलिस्ट ने क्लिनिक स्टार्ट कर दिया, मेरे पास कोई नहीं आएगा. तो यह है मैग्निफिकेशन, यह राइट थिंकिंग नहीं है. बल समस्या आई, टेंशन आया, परंतु अब ये जो नए डॉक्टर ने क्लिनिक शुरू किया है, तो एक तो बंबई इतना बड़ा शहर है, रोज लाखों लोग वहां रहने के लिए आते हैं. कुछ पेशेंट अगर उसके पास जाएंगे तो आपके पास भी आते रहेंगे. दूसरा इसमें एक अच्छा ये भी बात है कि आप भी कंपटीशन के रूप में, अगर उसके पास नए इंस्ट्रूमेंट है आप भी नए इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे, आप भी नई नई जो टेक्निक है उसको सीखेंगे, तो उससे वास्तव में आपको लाभ होगा. और बल प्रॉब्लम है परंतु कुछ पेशेंट तो जरूर आते रहेंगे. दूसरे एक उदाहरण में एक बहन ने अपने पति को बर्थडे पर दो टाइयां है वह सौगात के रूप में दी, और दो तीन मास के बाद एक पार्टी में जाना था तो उन्होंने एक टाई उस दिन पहनी. जब वह पार्टी से घर आए तो उनकी पत्नी बड़ी उदास थी. उसको बार बार पूछा कि मैं क्या बात है, तुम क्यों इतनी उदास हो, क्या मेरे से कोई गलती हो गई? तो उसने काफी पूछने के बाद कहा कि क्या आपको दूसरी टाई पसंद नहीं आई? तो अभी इसको कहते हैं, ये भी रॉन्ग थिंकिंग है. क्यों रॉन्ग थिंकिंग है? क्योंकि दो टाई तो साथ में नहीं पहन सकता है. इसको कहते हैं जंपिंग टू कंक्लूजन. जो निर्णय किया कि भी मैंने दो टाइयां इनको दी, इनको एक पसंद नहीं आई, वो जल्दी निर्णय कर लिया. वास्तव में और 6-8 महीना रुक जाते, अगर बार बार वो एक ही टाई पहनते रहते तो शायद ये निर्णय कर सकते हैं कि उनको दूसरी टाई पसंद नहीं आई. तो ऐसे हमें कभी भी निर्णय पर तुरंत नहीं आना चाहिए, रुकना चाहिए, सारा विश्लेषण करके करें. ऐसे कुल मिलाकर के 10 बातें हैं कि 10 रूप से हम रॉन्ग थिंकिंग करते हैं. और अगर उसको ठीक से समझ ले कि जब भी कोई हमें फीलिंग आई, कुछ बात हुई, तो उसमें से कौन से रूप से मैंने रॉन्ग थिंकिंग की, उसकी राइट थिंकिंग क्या होनी चाहिए, इस पर आपका पूरा एक हम सेशन लेंगे. और जिसमें आप यह भी समझेंगे कि कैसे अपना चार्ट रखना, जैसे हम पैसे का अकाउंट रखते हैं, ऐसे ही हमें अपने विचारों का भी जो है वह अकाउंट रखना सीखना चाहिए. और वह अगर हम सीख जाएंगे तो भी स्ट्रेस है वह बहुत कम हो सकती है. एक बहुत बड़ी बात की जो स्ट्रेस निर्माण करती है, इसीलिए इस स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड राइट थिंकिंग कोर्स में हमने एक स्पेशल सेशन इस बात पर रखा है. और वह कौन सी बात है? क्रोध. गुस्सा इतना स्ट्रेस निर्माण करता है कि उसके साथ हमें सचमुच डील करना आना चाहिए. आप में से भी कुछ लोग होंगे, हाँ यहां पर कितने लोग हैं जो समझते हैं कि क्रोध होना चाहिए, क्रोध जरूरी है? हाथ उठाइए. शायद आप तो बीकेस है इसलिए नहीं उठा रहे हैं, परंतु कोई सभा में आप ऐसे पूछेंगे तो देखा गया है कि 25 से 30% लोग हाथ उठाएंगे कि भी क्रोध जरूरी है. कोई बात नहीं, आप पूछो, क्योंकि लेक्चर सिर्फ देना जरूरी नहीं है, पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसके द्वारा वह पार्टिसिपेशन है वह हो सकेगा. तो उनको पूछिए, फिर क्या, कोई बात नहीं भी 25% कर रहे हैं कि भी क्रोध जरूरी है. परंतु हम उनको बताए कि अभी हम आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के विचार रखते, डीन ऑर्निश की, जो आज जग प्रसिद्ध हो गए, वह पहले डॉक्टर थे कि जिन्होंने यह सिद्ध करके बताया कि जीवन में परिवर्तन लाने से जो कोरोनरी आर्टरीज जो हमारी है वो ब्लॉक हुई है वो खुल सकती है। तो उनका जो कहना है कि इट इज नॉट इनफ जस्ट टू गेट इन टच विथ एंगर एंड टू एक्सप्रेस इट, इतना ही काफी नहीं है कि आप क्रोध को समझ लो सिर्फ कि मुझे क्रोध आ रहा है और उसको एक्सप्रेस कर दो। इन सम वेज दैट ओनली इंटेंसिफाइज द फीलिंग्स एंड फीड्स इन टू दैट डार्कनेस। जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो उल्टा क्या होता है कि दोबारा जब छोटा सा भी प्रॉब्लम होगा फिर से आप गुस्सा कर देंगे, भले उसके बाद अच्छा भी व्यक्ति को लगता है लेकिन वह जो थ्रेशोल्ड है आपकी क्षमता है डील करने की प्रॉब्लम को वह डे बाय डे कम होती जाती है और फिर छोटी छोटी बातों में सारा समय आप गुस्से में रहते हैं। और वास्तव में ऐसा करने से आप जैसे अंधेरे में ही भटक रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि इसका कोई सही रास्ता भी हो सकता है। दूसरे एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है, साइंटिस्ट के भी हम विचार देखेंगे कि एक बेस्ट सेलर किताब है जिसका नाम है द मिसअंडरस्टूड इमोशन। इस किताब में ऑथर ने जो बात बताई है कि साइकोलॉजिकल रैशनल फॉर वेंटिलेटिंग एंगर डू नॉट स्टैंड अप अंडर एक्सपेरिमेंटल स्क्रूटिनी। जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उसके आधार से जो तथ्य सामने आए वह इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं जो साइकोलॉजिकल लॉजिक बताते हैं कि भी हमें गुस्सा जैसे ही आए एक्सप्रेस कर दो ताकि आप हल्के हो जाओ। जो हमें एविडेंस मिले हैं और एविडेंस का जो वजन है शक्ति है वो इंडी वो वास्तव में इससे हमें उल्टा बता रहे हैं। जो सत्य इससे उल्टा है कि एक्सप्रेसिंग एंगर मेक्स यू एंग्रियर, सॉलिडिफाइज एन एंग्री एटीट्यूड। वो एटीट्यूड आपकी वह फॉर्म करता जाता है, बढ़ाता जाता है और आपकी एक हैबिट बनाता है जिसको कहते हैं हॉस्टाइल हैबिट। कई लोग हैं कि भी जिसके पास जाने से भी हम डरते हैं कि बाबा इससे बात नहीं करो, इससे बात करोगे अभी ये गुस्से में आ जाएगा। तो यह जो दोनों ऑथर्स की बातों को समझ करके और साथ साथ इस सारे लेसन में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि सप्रेशन भी बुरा है। आज लोग क्यों कहते हैं, जिन्होंने भी हाथ उठाए हैं 25% वो 25% लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि क्रोध जरूरी है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर फीलिंग्स को दबा दिया जाए तो उसका बुरा परिणाम हो सकता है। इसलिए फीलिंग्स को हमें दबाना नहीं है, परंतु जिसे कहते हैं कि एक्सप्रेस इट इन असर्टिव वे। बुद्ध ने भी कहा है कि जो मिडिल पाथ है वो सबसे अच्छा पाथ है, जिसमें भी एक और एंगर है दूसरी और सप्रेशन है। मिडिल पाथ है कि उसको मन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए परिस्थिति को देखते हुए व्यक्त करना, तो वह समस्या है उसका समाधान हो सकता है। तो एक सारा सेशन हम इस पर आपका लेंगे कि जिससे आपको डिटेल में जानकारी होगी। हम आपको यह भी बताएंगे कि आप भले गुस्सा करो भी, इसमें कोई बात नहीं है। अगर वर्स्ट कम वर्स्ट आपको लगता है कि भी क्रोध करना जरूरी है, भले आप क्रोध करिए, परंतु उस समय जो आपकी मन की स्थिति है वह कैसी रहती है उसको देखिए। और जो कहते हैं कि एक्टर के रूप में, जब एक्टर रोता भी है बहुत परंतु उसे वो कोई दुख का अनुभव नहीं होता, उसे पता है कि मैं तो एक्टिंग कर रहा हूं, तो ऐसे ही अगर आपको कभी ऊंची आवाज से बोलना पड़े, बच्चों को डांटना पड़े और कोई बात हो, तो ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है कि अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके आपको 1.1% भी वैसी फीलिंग नहीं आए। और जो आप कार्य कराना चाहते हैं आपके असिस्टेंट के द्वारा या बच्चों के द्वारा वह कार्य हो तो कभी कभार, वह भी आप बार बार करेंगे तो उल्टा उसका बुरा प्रभाव होगा। यह सारी बात को अच्छी तरह से खोल करके साइकोलॉजिकली हम इस सेशन में समझेंगे। और जो बहुत जरूरी चीज आज 21st सेंचुरी में है, क्योंकि स्ट्रेस तो बढ़नी ही है, तो जब ये स्ट्रेस बढ़ रही है तो जिस प्रकार से सर दर्द को खत्म करने के लिए हम एनाल्जेसिक लेते हैं, एसिडिटी को खत्म करने के लिए एंटासिड्स लेते हैं, तो ऐसे ही रिलैक्सेशन व स्ट्रेस की दवाई है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रेस एंड रिलैक्सेशन कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर. दोनों बातें, भाई अंधियारा और रोशनी, दोनों साथ साथ नहीं हो सकती है. तो ऐसे ही अगर आप रिलैक्स हैं तो आपको स्ट्रेस भी नहीं होगी. तो बहुत अच्छी अच्छी रिलैक्सेशन की टेक्निक्स हम आपको इस सेशन में बताएंगे कि कैसे आप इंस्टेंटली भी, कि भी कभी आप दो मिनट में रिलैक्स होना चाहते हैं तो कैसे हो सके. और आज कई लोगों ने जो रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस सीखी है उनका यह अनुभव है कि टी ब्रेक के बदले रिलैक्सेशन ब्रेक अच्छा है. और कंपनीज में आप जाते हैं तो बताइए कि भी वहां टी ब्रेक होता है, सवेरे आए 9 बजे, 11, 11:30 बजे टी ब्रेक होता है, फिर से लंच के बाद 3:30, 4 बजे टी ब्रेक होता है. तो क्योंकि देखा गया है कि ये टी ब्रेक के बजाय अगर हम रिलैक्सेशन ब्रेक लेते हैं 3-4 मिनट का भी, तो उससे फिर से हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, हमारी कोपिंग स्किल्स बढ़ जाती है और अच्छी तरह से हम प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं. इस सेशन में ये सारी बातें हम विस्तार पूर्वक समझेंगे. साथ साथ में आज मेडिटेशन शब्द भी बहुत ही पॉपुलर हुआ है, आज एक फैशन भी बन गया है. लोग समझते हैं कि भी हम मेडिटेशन करते हो तो हम ऊंचे लोग हैं, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि सचमुच मेडिटेशन क्या है. करीब ऐसी 24 पब्लिश्ड रिसर्च स्टडीज है कि जो ये बताती है कि जो लोग परमात्मा को मानते हैं उनमें कम तनाव होता है और वह लंबा जीते हैं, क्योंकि परमात्मा में विश्वास वह उनके दृष्टिकोण में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है. और मेडिटेशन की डेफिनेशन क्या है? वास्तव में मेडिटेशन की अगर सही डेफिनेशन लेनी हो, डॉक्टर सिल्वा मूर्ति की, जो हमारे भारत देश के सुप्रसिद्ध फिजियोलॉजिस्ट है, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है. सिंपल सी डेफिनेशन है, परंतु वह डेफिनेशन मेडिटेशन का सार बताती है, उसका एसेंस बताती है. भले और सब चीजें आप भूल जाओ, परंतु यह जो मेडिटेशन का एसेंस इन्होंने बताया है वह जरूर याद रखना. मेडिटेशन इज कम्युनियन ऑफ इनर लाइट विद द सुप्रीम लाइट. मेडिटेशन इज कम्युनियन ऑफ इनर लाइट विद द सुप्रीम लाइट. जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में हम भगवान से बातें करते हैं, हमारे मन के उद्गार है वो भगवान को सुनाते हैं, परंतु मेडिटेशन में भगवान की प्रेरणाएं हम प्राप्त करते हैं. और सचमुच जब मेडिटेशन की विधि हम आपको साइंटिफिकली बताएंगे, मेडिटेशन इज नॉट रिलीजन. हो सकता है कि आप धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे एक साइंटिस्ट एटम को लेबोरेटरी में स्टडी करता है, इसी प्रकार से हम आत्मा को भी साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं. और अगर आप सोल शब्द लेंगे तो क्या है? SOUL. तो सोल का अर्थ है, क्या है अर्थ? सोर्स ऑफ यूनिक लाइट. और जैसे एटम सूक्ष्म है, ऐसे ही सोल भी एक अति सूक्ष्म स्पिरिचुअल एनर्जी है. तो इस सत्र में जो साइंस ऑफ मेडिटेशन पर होगा, कि जिसमें सारे जो मेडिटेशन के साइंटिफिक बेनिफिट्स है वह हम समझेंगे, मेडिटेशन की विधि को भी हम सही प्रकार से समझेंगे. और मेडिटेशन इस बात में भी हमें मदद करता है कि हम राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को होलिस्टिकली यूज करें. रॉजर स्पेरी, ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, ब्रेन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस बात पर रिसर्च की है कि कैसे हमें राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को होलिस्टिकली यूज करना चाहिए, तो हमारी क्षमता कई गुना बढ़ सकती है. और यह थियोरी तो ठीक है, परंतु प्रैक्टिस में उन्होंने भी यह कहा है. और दूसरे साइंटिस्ट है हर्बर्ट बेंशन, कि जिन्होंने रिलैक्सेशन को काफी पॉपुलराइज किया, उनका भी यह कहना है कि मेडिटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक ऑफ यूटिलाइजिंग राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन इन अ होलिस्टिक वे. तो इस प्रकार से जो सारे साइंटिफिक एस्पेक्ट्स है, वह साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को हम समझेंगे इस सत्र में. और अब इस ओवरव्यू के सेशन में भी हम आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, जो रिलैक्सेशन की बात कही कि किस प्रकार से हम अपने आप को रिलैक्स करें। बहुत सारी रिलैक्सेशन की टेक्निक्स अवेलेबल है और उसमें से जो सबसे सरल और 5 मिनट में ही आप रिलैक्स हो सको ऐसी ये टेक्निक है, जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन बाय सेल्फ सजेशन। क्या आप सब करना चाहते हैं या बहुत थक गए? थक गए? थक गए हो तो नहीं करेंगे। तो आप भी क्या करो, ऐसे उनको पूछो, उन पर थोक नहीं बिठाओ कि चलो रिलैक्सेशन करते ना। पार्टिसिपेंट्स को पूछो करना है पहले इंपॉर्टेंस बता दो, तो ऑटोमेटिकली 5-6 तो मिलेंगे ही आपको जो कहेंगे हाँ हाँ जरूर कराओ। और सपोज कई बार ये भी होगा, कल अवधेश भाई ने भी बताया था कि दोपहर का समय है, लोग खाना खा के सो रहे आपके सामने ना, तो फिर भले नहीं रिलैक्सेशन कराओ नहीं, आप ये थियोरी में बता दो और फिर जो मैं आपको एंड में बताऊंगा उस अनुसार उनको पूछ लो, बट डोंट गिव प्रैक्टिस। इफ सम पीपल आर इंटरेस्टेड, 50% भी अगर इंटरेस्टेड हो तो रिलैक्सेशन कराओ। और तब ये रिक्वेस्ट भी करो कि जिनको इंटरेस्ट है कृपया आप सिंसियरली करिए, और जिनको इंटरेस्ट नहीं है जस्ट अटेम्प्ट, शायद आप नहीं भी होंगे बट यू विल नॉट लूज एनीथिंग। आप 5 मिनट बैठ करके थोड़ी कोशिश करिए, हो सकता है कि आप भी एक सारे जीवन के लिए उपयोगी विधि को सीख जाए। ऐसे टैक्टफुली रिलैक्सेशन हम करा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस विधि में अभी हर बात में आपको यह सोचना है कि कितना समय है। कभी भी यह ना हो कि अगर 1 घंटा दिया गया आप 1.5 घंटा बोलो तो उसकी इंप्रेशन नेगेटिव होगी, भले मैंने अधिक समय लिया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो बातें मैंने बताई आप 50% भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। इसलिए अगर मैंने 2 घंटा बोला है आप 1 घंटा भी बोलो तो बहुत अच्छा है, इसके कारण आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी। परंतु आप अच्छी तरह से प्लान करिए कि कितना टाइम लेना है, और उसका एक तरीका है, भले आप सारे पॉइंट्स नहीं भी लिखते हैं, जरूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड आप सारा लेक्चर लिख दो, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखिए और मेंटली सोचिए कि इसमें कितना टाइम लेना है, कि भाई एग्जाम्पल देने में 2 मिनट लगेगी, इस बात को बताने में 5 मिनट लगेगी, इस बात को बताने में 1 मिनट लगेगी, ऐसा ऐसा सोचते जाइए और अपना टोटल कर लीजिए कि भी 1 घंटा है तो आप 50 मिनट्स का बनाइए। हो सकता है कि वो थोड़ा सा बढ़ जाए, कम होने पर कोई इतराज नहीं है। आप क्वेश्चन आंसर का सेशन भी थोड़ा लंबा चला सकते हैं, या तो रिलैक्सेशन आप थोड़ा लंबा करा सकते हैं। तो ऐसे प्रॉपरली प्लान करके हम जाए जब भी ये ओवरव्यू का लेक्चर लेना हो, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके आधार से आपको पूरा कोर्स कराने के लिए निमंत्रण मिलेगा। ये जो रिलैक्सेशन की विधि है कि जिसका सिद्धांत बहुत ही सरल है, बार बार मन हमारे शरीर से बातें करता रहता है, और जो भी बात मन करता है वह शरीर उसे तुरंत फॉलो कर लेता है। इसका एक बहुत ही सिंपल और रोचक उदाहरण है। एक बिजनेसमैन थे, एक दिन अपने ऑफिस में बैठे थे, बहुत कार्य में व्यस्त थे, अचानक उनका ध्यान गया कि वह रोज एक जूठा दांत पहनते थे, घर पे क्लीन करके फिर से पहन लेते थे, ध्यान उस दांत की ओर गया तो उन्होंने पाया कि वो दांत नहीं है। अभी ये भी देखो, बोलने का ढंग है, आपको भी वो एक्सप्रेशन दिखाने, कह रही वो नहीं है, नहीं आप ऐसे सीधा सीधा बोल देंगे तो इफेक्ट नहीं होगी, नहीं ड्रामेटाइज करना है, और फिर रुक भी जाओ, नहीं बीच में रुक भी जाओ, उनको लगे दांत नहीं है। कोई भी संभावना के बारे में सोचने के बदले तुरंत उनके मन में एक्सट्रीम नेगेटिव विचार आया, क्या कि वो मैं मेरे पेट में चला गया होगा। और जैसे ये विचार आया, इससे पहले तो वो बिल्कुल स्वस्थ थे, अपना काम कर रहे थे, परंतु जैसे ये विचार आया उनको पेट में दर्द शुरू हो गया, हृदय की धड़कन है वो बढ़ गई, पसीना पसीना हो गए, तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने आकर के उन्हें अच्छी तरह से चेक किया, एक्सरे भी लिया, परंतु फिर भी वह जूठा दांत कहीं पर दिखाई नहीं दिया। तो डॉक्टर ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि भाई ये जूठा दांत आपके पेट में नहीं है, फिर भी उन्हें यह विश्वास नहीं हुआ, दर्द कायम रहा। अचानक यही सब भागदौड़ हो रही थी और घर से एक बार फोन आया तो असिस्टेंट ने बताया कि ऐसी सीरियस घटना सांप के साथ हुई है। तो तुरंत सामने से जवाब मिला कि क्या बेवकूफ जैसी बातें करते हो, साहब तो आज जूठा दांत घर में भूल गए। और जैसे ही उन्हें यह मैसेज दिया गया कि साहब आप तो जूठा दांत घर में भूल गए हैं, एक सेकंड में उनका दर्द भी खत्म हो गया। तो इस सारी शरीर ने प्रभाव दिखाया। दोबारा जब डॉक्टर ने समझाया भी कि नहीं भाई आपके पेट में यह दांत नहीं है, फिर भी उनके मन में डाउट रहा कि शायद डॉक्टर इसे ठीक से ढूंढ नहीं पा रहे, वह डाउट के कारण उनका दर्द कायम रहा। और जब घर से मैसेज आया कि आप घर में भूल गए हैं, तो फिर तो डाउट करने का कोई कारण नहीं था, तो वह डर भी खत्म हो गया। तो ऐसे ही इस विधि में भी हम शांति से बैठ करके पैर की उंगलियों से लेकर के सर तक शरीर के एक एक अंगों को मेंटली ऑर्डर देते हैं कि भी वो रिलैक्स हो जाए, वो बिल्कुल हल्का हो जाए। और जब हम शांति से ऑर्डर देते हैं तो सचमुच वो अंग रिलैक्स होते हैं। इस कोर्स में हम आपका सारा एक घंटे का भी ये सेशन लेंगे कि जिसमें यह विधि को भी विस्तार पूर्वक बताएंगे और भी कई टेक्निक्स को हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे। फिर भी एक आज अनुभव के रूप में छोटा सा प्रयोग करते हैं कि किस प्रकार से रिलैक्स हो। सिर्फ बस आप ये देखना कि हमें आराम से बैठना है, कोई प्रेशर नहीं लेना है। जब हम रिलैक्स करते हैं तो भी कोई दबाव है वो अपने अंगों पर नहीं डालना है, बहुत ही हल्के से शरीर के अंगों को ऑर्डर्स देने हैं और जो भी फीलिंग हो वो अच्छी है। रिलैक्सेशन से कोई नुकसान नहीं, ज्यादा से अधिक क्या होगा कि आप रिलैक्स नहीं होंगे तो भी कोई बात नहीं। और इसमें हम शरीर की स्थिति क्या अपनाते हैं कि जैसे आप चेयर में बैठे हैं परंतु जितना हो सके चेयर में अंदर बैठिए ताकि आपकी कमर है वह सीधी हो, पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखिए, बहुत ज्यादा भी अंतर ना हो बहुत दूर भी ना हो। और अभी इसका एक अच्छा तरीका, इस सारे सेशन को प्रभावशाली बनाने का, अपने आप अपने साथ कोई एक भाई बहन को तो जरूर ले जाते हैं कि जो कैसेट बजाने में और बातों में आपको मदद करते हैं, तो उनको आप बता दीजिए और आप स्वयं भी वहां से उठ जाइए। और क्योंकि इतना बड़ा तो ऑडियंस नहीं होता है, आमतौर पर जब हम कंपनीज में या कहीं जाते हैं तो कम लोग होते हैं, तो सबकी पोजिशन को आप देखो कि उन्होंने कैसे रखा है। बीजे को इन्होंने बहुत अंदर रख दिया है तो उनको बताइए कि भी थोड़ा सा आगे रखो इससे, हाँ नहीं वो कंफर्टेबल पोजीशन को देखो, ये भाई अंदर ही रख के बैठे हैं, तो उनको आप कहेंगे तो इसकी भी इफेक्ट होती है कि भी प्रॉपर सारी पोजीशन को हमारी देख रहे हैं और ये जो रिलैक्सेशन की टेक्निक है वह होगी। ऐसे प्रॉपर पोजिशन में बैठ करके हम बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बजाएंगे कि जो सॉफ्ट म्यूजिक भी आपको रिलैक्स करने में मदद करेगा, सारे शरीर को बिल्कुल हल्का करके आराम से बैठते हैं। विशेष रूप से जब आप ये कराएंगे, भले आज तो आप आंखें खुली रख करके ही रिलैक्सेशन और मेडिटेशन दोनों हम करें, परंतु उनके लिए क्योंकि वो नए लोग हैं, उन्होंने अभी तक मेडिटेशन सीखा नहीं है, तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये कहना उचित है। कई बहनें हमारी कहती है कि नहीं आंखें खुली रख के बैठो, नहीं ठीक है कि राजयोग तो खुली आंखों से ही किया जाता है, परंतु क्योंकि उन्हें अभी तक अभ्यास नहीं है और वो उल्टा कर नहीं पाएंगे, उससे अच्छा है कि शुरू के दो चार सेशन भल वो आंखें बंद रखे, जब उनका ध्यान लगने लगे फिर उनको हम सिखाए कि आंखें खुली रखने का इंपॉर्टेंस क्या है, उससे कैसे एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं कि जो बंद आंखों में नहीं होते हैं। और फिर उनको धीरे धीरे हम कहें कि आप सेमी ओपन आंखें रखिए, पूरी आंखें खुली रखिए, तो लोग कर पाएंगे। और सचमुच देखा भी गया है कि जब ऐसे करते हैं तो कहीं स्वयं कहते हैं कि हाँ अभी हमारे लिए पॉसिबल है, आंखें खुली रख करके भी हम रिलैक्सेशन और मेडिटेशन कर पाते। आराम से बैठिए, सारे शरीर को एकदम हल्का छोड़ दिए। सर्वप्रथम 4-5 गहरे सांस लेते हैं, जब जब सांस लेते हैं तो एक शक्ति का संचार हो रहा है, आपके शरीर में एक शक्ति का अनुभव हो रहा है, एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है। अब
सारे शरीर को हल्का छोड़ते हुए सर्वप्रथम पैरों की उंगलियों में होने वाली फीलिंग्स को अनुभव करते हैं कि पैरों की उंगलियों में क्या फीलिंग्स हो रही है। पैर की उंगलियां रिलैक्स होती जाती है, एकदम हल्की हो जाती है, रिलैक्स। बिल्कुल शांत हो रही है, रिलैक्स। धीरे धीरे पैर का पंजा भी रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स। दोनों पैरों के पंजे हल्के और शांत हो रहे हैं, रिलैक्स। बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, दोनों पैर भी शांत होने लगे हैं, रिलैक्स। लेट गो। रिलैक्स। संपूर्ण पैर एकदम हल्के होने लगे हैं, रिलैक्स। हम अपनी चेतना को पैरों से विड्रॉ कर देते हैं, पैर डेड बॉडी की तरह पड़े हैं, हम सिर्फ ऊपर के हिस्से के बारे में ही जागृत है, रिलैक्स। सांस की गति पर ध्यान दे, सांस लेते समय और सांस बाहर आता है तब पेट और चेस्ट की मूवमेंट पर ध्यान देते हैं, पेट की मांसपेशियां भी एकदम रिलैक्स हो जाती है, रिलैक्स। शांत हो रही है, रिलैक्स। आंतरिक अवयव भी रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स। हृदय भी नियमित और शांत हो रहा है, रिलैक्स। लेट गो। लेट गो। पीठ और कमर की मांसपेशियां एकदम शांत और रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स। हाथ की उंगलियां भी शांत हो रही है, बिल्कुल रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स। बाहें भी शांत और रिलैक्स होने लगी है, रिलैक्स। लेट गो। लेट गो। गले से नीचे सारा शरीर एकदम शांत हो गया है, जैसे कि हम गले के ऊपर के हिस्से के बारे में ही जागृत है। मुंह को थोड़ा सा खोलिए ताकि लोअर जॉ से संबंधित मसल्स रिलैक्स होने लगे। रिलैक्स, लेट गो। लोअर जॉ रिलैक्स हो रहा है, चेहरा भी शांत होने लगा है। रिलैक्स, आंखें शीतल और शांत हो रही है। रिलैक्स, दिमाग भी एकदम शांत हो जाता है, बिल्कुल हल्का हो रहा है। रिलैक्स, लेट गो। पैरों की उंगलियों से सर तक सारा शरीर शांत हो गया है। आप सिर्फ अपने विचारों के विषय में ही जागृत है। ये विचार पॉइंट ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट में निर्माण होते हैं, मस्तिष्क के मध्य में। यह पॉइंट ऑफ लाइट ही सभी विचारों को निर्माण करती है, सभी भावनाएं फीलिंग्स भी यहीं पर निर्माण होती है। जैसे जैसे हम इस बारे में जागृत होते हैं और अधिक न्यारापन महसूस हो रहा है। आई एम अ पीसफुल सोल। इस स्थिति को मैं सदैव कायम रखूंगा, कैसी भी परिस्थिति आए पूर्ण रूप से रिलैक्स होकर ही कार्य करूंगा। तनावपूर्ण परिस्थिति में भी वह जो मैसेज दे रहा है उसे मैं सुनूंगा, स्वीकार करूंगा, अपनी जांच भी करूंगा ताकि अपने आप में परिवर्तन आ जाए। हर परिस्थिति को मैं चैलेंज के रूप में लूंगा, उसका सामना करने की मेरी क्षमता को बढ़ाता जाऊंगा। जो भी मेरे कंट्रोल में है वही करूंगा। हर परिस्थिति में राइट थिंकिंग को कभी नहीं छोड़ूंगा, कैसी भी विकराल परिस्थिति हो, सही विचारधारा के द्वारा मन का संतुलन रखूंगा। ये बातें मुझे बार बार याद आएगी ताकि मैं अपने तनाव को सही रूप से संचालित कर सकूं। धीरे धीरे वापस जागृत स्थिति में आते जाते हैं, आंखें खोलते हैं, आपको फ्रेशनेस का अनुभव हो रहा है, ताजगी का अनुभव हो रहा है। बिल्कुल फ्रेश और जागृत स्थिति में आ जाते हैं। ओम शांति। तो एक छोटी सी यह विधि थी और अंत में ये जो सारा कोर्स है कि अगर आप इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो मैं आपको एक अंत में कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप यह कोर्स में जो बताई बातें हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे तो इस कहानी का जो अंत है हो सकता है कि आपके मन की स्थिति भी वैसी ही बने। आर्थर बेरी बहुत ही फेमस गहने चुराने वाला चोर था। आर्थर बेरी चोर था, वह सिर्फ गहने चुराता था और वह इतना फेमस था, ज्वेल थिप था, ज्वेलरी को चुराता था और वह इतना फेमस था कि उसके समय में अच्छे अच्छे लोग स्वयं आर्थर बेरी के पास जाते थे कि भी उसके गहने चुराए। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी व्यक्ति के गहने नहीं चुराएगा, बहुत धनी लोगों के ही वह गहने चुराता था। जैसे आज बंबई में कई लोग स्वयं इनकम टैक्स को फोन करते हैं कि हमारे पास घर में आके रेट डालो। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स वाले जिसके पास 10-15 करोड़ रुपए होंगे उसके ही पास रेट डालते, ऑर्डिनरी व्यक्ति के पास नहीं जाते। तो ऐसा ही आर्थर बेरी का भी था। परंतु आखिरी में एक बार वो पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया उसे जेल भी हुई तो उसने सोचा कि अभी मुझे चोरी का धंधा छोड़ देना है, अब मैं आराम से एक छोटे से गांव में चुप रहूंगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। और जब वह फ्री हुआ जेल से तो एक छोटे से गांव में रहने लगा, किसी को पता नहीं था यह कौन है। परंतु एक दिन यह समाचार फैल गया, लोगों को पता चल गया कि यही बहुत ही फेमस चोर है। तो बहुत सारे पत्रकार उसके पास इंटरव्यू लेने के लिए आने लगे उसके जीवन के बारे में, कि हमारे अखबार में इसके बारे में हम आर्टिकल छापे, और बहुत सारे आर्टिकल छपे भी उसके। आखिरी एक बार सचिन भाई जैसा यंग जर्नलिस्ट उसके पास गया और उसने आर्थर बेरी को सीधा प्रश्न पूछा कि आर्थर बेरी क्या आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा धन तुम्हें किससे मिला? एक भी सेकंड की देरी करे बिगर आर्थर बेरी ने कहा, सबसे ज्यादा माल मैंने अपने आप से लूटा। ओम शांति।